नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी दूसरा थिस्सलुनीकियों नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने इस अध्ययन को हम आरंभ करें, लेकिन इससे पूर्व मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण स्थान। उसमें मैं पाता शरण स्थान। यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। पाप की लहरों से घिरा हुआ था, न कोई मंजिल और न किनारा। पाप की लहरों से घिरा हुआ था, न कोई मंजिल और न किनारा। वो आया बनकर मेरा सहारा, वो आया बनकर मेरा सहारा। पाप की लहरों से मुझे उबारा, पाप की लहरों से मुझे उबारा। यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। जीवन था मेरा पाप की खाई, सब दूर निराशा रहे अंधेरी। जीवन था मेरा पाप की खाई, सब दूर निराशा रहे अंधेरी। क्रूस की ओर जब दृष्टि उठाई, क्रूस की ओर जब दृष्टि उठाई, किरण जीवन की हृदय में आई। किरण जीवन की हृदय में आई। यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण स्थान। उसमें मैं पाता शरण स्थान।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा मसीही नमस्कार मिले। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आप अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों का भी स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपको मालूम है कि हम इन दिनों दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। और हम देख रहे थे कि प्रभु के आगमन में विश्वास करने वाले को अपने जीवन से उसका प्रदर्शन करना है, विश्वास के काम में लग जाना है और हमें धीरज धरकर प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करना है। तो इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि प्रत्येक जन जब आपके वचन को सुनता है तो हर एक के जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आज के इस वचन के द्वारा प्रत्येक के जीवन में शांति और आनंद आ जाए, आप पर विश्वास बढ़ जाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमार अवस्था में हैं, नौकरी की तलाश में हैं या अपने जीवन में पारिवारिक आशीष को पाना चाहते हैं। पिताजी, आप उनके साथ हो, उनकी इच्छाओं को आप पूरा करें, उन्हें चंगाई और छुटकारा दें, उनके जीवन में शांति और आनंद दें ताकि आज के इस वचन के द्वारा वे आप में बढ़ने पाएं। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 9 पद को निकाल लीजिए जहां पर इस प्रकार से लिखा है, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। ध्यान दीजिए, लिखा है कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। पौलुस के कहने का अर्थ यह है कि वह परमेश्वर का प्रेरित है जिसने उन्हें प्रभु यीशु से जोड़ा और कलीसिया की स्थापना की, अतः उसे अधिकार है कि वह उनसे भेंट का आग्रह करे, परंतु वह ऐसा नहीं करेगा कि थिस्सलुनीके के समक्ष एक उदाहरण हो कि वे किसी धर्मांध शिक्षा में न बह जाएं, न पढ़ जाएं। कहने का तात्पर्य है कि किसी गलत शिक्षा में न जाएं। जी हां, यह हमारे लिए भी अवश्य है कि हम वचन को जाने और गलत शिक्षा में ना बहक जाएं। मैं एक बाइबल संस्था में जाया करता था जहां कुछ विद्यार्थियों को मैं पढ़ाता था। वहां एक युवा दंपत्ति की मानसिकता धर्मांधता की थी। यहां पर धर्मांधता का अर्थ यह है कि वे गलत शिक्षा को ग्रहण करते थे। वे सोचते थे कि वे अन्यों से अर्थात दूसरों से कहीं अधिक धर्मी थे, परंतु उनका परीक्षा परिणाम सबसे नीचे की श्रेणी में था। सच तो यह था कि वे वचन के विषय में अज्ञानी थे जबकि वे दिखाते थे कि वे बहुत अधिक आत्मिक जन थे। परमेश्वर के वचन को न जानकर कोई आत्मिक कैसे हो सकता है? जब मैं कलीसियाई सेवकाई में जाता हूं और प्रवेश करता हूं तब वे आकर मुझसे बोलते हैं कि वे प्रचार क्षेत्र में जाना चाहते हैं। कहने का अर्थ है कि कई लोग चाहते हैं कि वे प्रचार के लिए जाएं, परंतु वचन की अज्ञानता के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। वे मेरी कलीसिया के सदस्य तो नहीं थे परंतु आराधनालयों में आते थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या उनके पास आर्थिक सहयोग की व्यवस्था है? उन्होंने कहा, जी नहीं। मैंने उनसे पूछा, क्या आप लोग आर्थिक सहयोग के बिना सेवा कर पाएंगे? उन्होंने कहा, ओह, हम प्रभु में विश्वास करके आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा, प्रभु पर विश्वास करना तो अति उत्तम बात है, परंतु आप सेवा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उस पर भरोसा करें। इसकी अपेक्षा आप अभी उस पर भरोसा करके सेवा में प्रवेश करने से पूर्व आर्थिक सहयोग की प्रतीक्षा करें तो तो उचित होगा। मेरे मित्रों, आप किसी प्रतिष्ठित सेवा सदन के साथ जुड़कर सेवा क्यों नहीं करते? यदि प्रभु ने आपको सेवा में बुलाया है तो वह आपके लिए आर्थिक प्रबंध भी करेगा। वह आपकी आवश्यकताओं को किसी न किसी के मन का बोझ बनाएगा, जो आपको सहयोग तो देंगे ही, साथ ही आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। परंतु वे ऐसा नहीं करना चाहते थे। वे प्रभु पर भरोसा करके सेवा करना चाहते थे, अतः वे सेवा में लग गए। वहां जाकर वे अत्यधिक बीमार हो गए। उनके मित्रों ने पैसा इकट्ठा करके उनके घर लौट आने का प्रबंध किया। घर लौटने के बाद उनमें तलाक हो गया। मुझे बताया गया कि उस महिला ने तो फिर से विवाह कर लिया और उसका पहले वाला पति विश्वास से पूरी तरह भटक गया है। मुझे तो पहले ही से उसके विश्वास पर संदेह था। उनका सोचना मूर्खतापूर्ण एवं धर्मांध था। मेरे प्रियो, पौलुस सेवा कार्य को अत्यधिक व्यवहारिक बना रहा था। वह अपने हाथों से परिश्रम से आर्थिक सहयोग उगाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि वह मेहनत करके पैसे जमा करता था। वह थिस्सलुनीके की कलीसिया के लिए एक उदाहरण था। अगले पद में वह इस विषय पर चर्चा करेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3:10 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करने वाला विश्वासी स्वप्नदर्शी नहीं है, वह एक कर्मठ कार्य करता है। काम नहीं तो खाना नहीं। जी हाँ, पौलुस ने यह एक नियम बनाया था, यदि कोई काम ना करे तो उसे भोजन भी ना दिया जाए। यह बड़ी विचित्र बात है कि लोग इस विषय में कैसे धर्मांध हो जाते हैं, कैसे वे अंधे हो जाते हैं। मूडी बाइबल संस्थान के एक अधिकारी ने वर्षों पुरानी एक घटना सुनाई। दो युवक एक कमरे में रहते थे। वे भी ढोंगे ही थे। वे सोचते थे कि वे पूरी तरह पवित्र हैं। एक दिन वे न तो नाश्ते पर और न ही दिन के भोजन पर और न रात के भोजन पर दिखाई दिए। तो इस अधिकारी ने जाकर उन्हें देखा कि समस्या क्या है। वे दोनों बैठकर आकाश को घूर रहे थे। उसने पूछा कि उनका स्वास्थ्य तो ठीक है? उन्होंने कहा, जी हाँ, हम ठीक हैं। तो फिर वे भोजन के लिए क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा, हम परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए हैं कि वह आकर हमसे कहे कि हमें भोजन के लिए आना है या नहीं। अधिकारी ने पूछा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? उन्होंने स्वीकार किया कि वे भूखे थे। क्या यह एक चिन्ह नहीं कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हें भोजन करना चाहिए? तब उन्होंने कहा, नहीं, हम विशेष प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं, और जब तक हमें यह विशेष प्रकाशन प्राप्त नहीं होगा, हम यहां से नहीं टलेंगे। उनके उस अधिकारी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए शुभ समाचार है। तुम लोग भोजन कक्ष में नहीं, अपने अपने घर जाओगे। तुम यहां नहीं रहोगे। धर्मांतों के लिए यह स्थान नहीं है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन में अंधे हो जाते हैं, उस सत्यता को नहीं देखते हैं, तो हमें वचन को पढ़ने और जानने का कोई मतलब नहीं रहता है। यहां पर ऐसे ही कई ढोंगी हैं जो परमेश्वर के वचन को गलत रीति से प्रयोग में लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे बहुत धर्मी हैं, परंतु वे इस बात को भूल जाते हैं कि वे अभी भी अंधे हैं। आज हम भविष्यवाणियों के क्षेत्र में ऐसी धर्मांधता को देखते हैं। यह बड़ी रोचक बात है कि यह पत्र अधिकतर भविष्यवाणी से संबंधित है और पौलुस इसकी व्यवहारिकता पर अधिक बल देता है। कलीसिया के लिए प्रभु के आगमन का महान सत्य व्यवहारिकता से पूर्ण है। भविष्यवाणी के बारे में धर्मांध होना एक बात है और उस भविष्यवाणी के सत्य पर विश्वास करना दूसरी बात है। इन दोनों को संयोजित करके यहाँ जीवन निर्वाह करना है कि यह सत्य व्यवहारिक एवं कार्यकारी हो। मेरे प्रियो, हमें प्रतीक्षा के साथ साथ काम भी करना है। एक महान गढ़ का बागवान अपने एक आगंतुक को संपूर्ण क्षेत्र दिखा रहा था। वह क्षेत्र बहुत ही अच्छी तरह संभाला गया था। उसके बगीचे अति सुंदर थे, तरह तरह के फूल थे। भोजन करते समय उस आगंतुक ने पूछा, आप इस जगह को इतना सुंदर कैसे बना करके रखते हैं? बागवान ने कहा, मैं स्वामी के आगमन की तैयारी में हूं। उस आगंतुक व्यक्ति ने पूछा, क्या वह अगले सप्ताह आएगा? बागवान के माली ने उत्तर दिया, मैं यह तो नहीं जानता कि वह कब आएगा, परंतु मैं आज उसके आने की प्रतीक्षा में हूं। यद्यपि वह उस दिन तो नहीं आया, परंतु वह स्वामी के आने की प्रतीक्षा में था। वह बागवान प्रवेश द्वार पर खड़ा अपने स्वामी के आने की प्रतीक्षा में नहीं था, वह अपने बगीचे के सौंदर्यकरण में व्यस्त था। उसके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वह काम भी कर रहा था, वह व्यस्त था। जी हाँ, पौलुस यही कह रहा है कि जब वह कहता है कि उसके आगमन की तैयारी में हम काम में जुट जाएं, यदि हम परमेश्वर के आगमन की तैयारी में हैं, तो मुझे और आपको भी उसके आने की तैयारी में काम करते रहना है, उसके वचन को दूसरों तक पहुंचाते रहना है, ताकि लोग वचन को जाने, उसे जाने और उसके राज्य में प्रवेश करने पाएं। वह कहता है, कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। थिस्सलुनीके की कलीसिया में कुछ धर्मांध थे जो सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में बैठ गए थे। पौलुस कहता है कि उन्हें खाना मत दो, उन्हें काम करना है। आज भी जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो हम भी इसी प्रकार के कुछ गलत शिक्षा को ले लेते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर जब तक मुझे आकर के नहीं बोलेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरे प्रियो, हम आज भी परमेश्वर के वचन की सत्यता से कितने दूर हैं। दूसरे थिस्सलुनीकियों के पत्री 3 अध्याय के 11 पद में लिखा है, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। परिस्थिति यह थी कि कुछ लोग रचनात्मक कार्य नहीं करते थे, वे व्यस्त तो रहते थे, परंतु परमेश्वर के वचन के प्रचार में उनका योगदान नहीं था। वे थिस्सलुनीके की कलीसिया में परेशानियां खड़ी कर रहे थे। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक सड़ा हुआ आम टोकरी के सारे आम को सड़ा देती है। उसी प्रकार एक धर्मांध अनेक भक्तों पर बुरा प्रभाव डालता है। यही कारण है कि पौलुस ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वे बुरी चाल चलने वाले से दूर रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि पौलुस ने जब यह निर्देश दिया था, तब उसके मन में इन्हीं लोगों का विचार था। वे दीमकों के समान व्यस्त थे और थिस्सलुनीके की कलीसिया को हानि पहुंचा रहे थे। मेरे मित्रों, यहां पर स्पष्ट है कि कलीसिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर के वचन के प्रचार कार्य में हाथ नहीं बटाते हैं, सहयोग नहीं देते हैं, परंतु आलोचना करते हैं और उस कार्य को किसी न किसी रूप में रोकने का यत्न करते हैं। आज जब हम अपनी कलीसियाओं को देखते हैं, तो आज भी ये सारी बातें हमारे कलीसियाओं में पाई जाती हैं। क्या आपने इन सारी बातों पर ध्यान दिया है? पौलुस इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहता है कि ऐसे लोगों से सचेत रहो, उनके साथ में मत मिल जाओ, अन्यथा तुम भी उसके समान हो जाओगे। हम आगे पढ़ते हैं, 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं। कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। मेरे प्रियो, यह तो आत्मिक नहीं प्रतीत होता है, न ही यह किसी प्रकार का धर्म विज्ञान से संबंधित बात लगती है, परंतु यह निश्चित रूप से व्यवहारिक है। परंतु यदि ये व्यर्थ के बकवादी मनुष्य कलीसिया में शांत रहकर रचनात्मक काम करें तो कलीसिया की बहुत सी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह बड़ी रोचक बात है कि मेरी एक कलीसिया में सबसे अधिक परेशानी खड़ी करने वाला सदस्य वह था जिसका योगदान कलीसिया में बहुत कम था। मुझे यह बात संयोगवश ही पता चला। मेरा खजांची अर्थात कलीसिया का देखभाल करने वाला उसकी शिकायत कर रहा था कि वह बहुत अधिक परेशानी खड़ी कर रहा है। मैंने कहा कि शायद वह जानना चाहता है कि उसका पैसा कलीसिया में कैसे काम में लाया जा रहा है। खजांची हंसकर बोला, वह वर्ष में केवल 10 रुपया ही देता है। मेरा विश्वास करें कि उसने हमें 10 रुपए से कहीं अधिक परेशानियां दी थी। संभवतः ऐसे ही सदस्य थिस्सलुनीके की कलीसिया में थे और पौलुस कहता है कि वे अपना मुंह बंद रखें और काम पर जाएं तो अच्छा होगा। आज हमारी कलीसियाओं में भी ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं। किसी भी प्रकार का योगदान तो नहीं देते, परंतु वे समस्याओं को अवश्य ही खड़ा करते रहते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस कहता है, तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। यह कैसी उत्तम बात है। धन्य आशा रखने वाले विश्वासी को प्रभु के काम से उबना नहीं चाहिए। जैसे मूडी ने कहा था, मैं काम करके थक जाता हूं परंतु काम से नहीं थकता। आज यही बात हम सब के लिए उचित है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, यदि कोई हमारे इस पत्री की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो जिससे वह लज्जित हो। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए कि कलीसिया को उपद्रवी मनुष्य से दूर रहना चाहिए। कुछ लोग उनका पक्ष लेते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि ये लोग उनके विरुद्ध जहर घोलें। परंतु यह सच है कि अफवाह फैलाना रोका जाए तो अनेक कलीसियाओं को लाभ पहुंचेगा। कुछ लोग विरोध इसलिए नहीं करते हैं कि उनका संबंध उनके साथ खराब ना हो जाए, परंतु वे इस बात की चिंता नहीं करते कि कलीसिया को उससे हानि पहुंच रही है। दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री 3 अध्याय के 15 पद में लिखा है, तो भी उसे बैरी मत समझो पर भाई जानकर चिताओ। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि ऐसे पथ भ्रष्ट भाइयों को संभालने के लिए भी प्रयास करना आवश्यक है। उन्हें छोड़ नहीं देना है परंतु उन्हें समझाना है। दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री 3 अध्याय के 16 पद में लिखा है, अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। यह क्या एक उत्तम आदेश नहीं है। दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री उसके 3 अध्याय और 17 पद में लिखा है, मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूं। हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है, मैं इसी प्रकार से लिखता हूं। पौलुस ने स्वयं अपने हाथों से लिखा था। और तब इस अध्याय का अंतिम पद दूसरा थिस्सलुनीकियों के पत्री 3 अध्याय उसके 18 पद में लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। मेरे प्रियो, पत्र का अंत आशीर्वाद से होता है। यह इस अद्भुत पत्र का उपसंहार है जिसमें सिखाया गया है कि भविष्यवाणी का ज्ञान जो धर्मांधता और निष्क्रियता से परे है मन को शांति दिलाता है। मेरे प्रियो, यह क्या ही उत्तम बात पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों को कहता है कि वे परमेश्वर के अर्थात प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी में रहें और इसके लिए चुपचाप बैठे न रहें परंतु कार्य करते रहें। वचन पर विश्वास में दृढ़ होते रहें। आज इस वचन के द्वारा से पौलुस हमें भी यही बात कहता है कि हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर से मिलने के लिए, उसके उस शांति को पाने के लिए। मेरे प्रियो, मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही लाभ प्राप्त किया है। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और इसके साथ ही दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री का भी समापन होता है। अगले अध्ययन में हम एक नए पुस्तक के साथ अध्ययन आरंभ करेंगे। तब तक आप सब प्रभु के निकटता में बने रहें, उससे प्रेम करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु तुम्हें अपने दिल में बसाया है, दिल में बसा के तुझको अपना बनाया है। यीशु तुम्हें अपने दिल में बसाया है, दिल में बसा के तुझको अपना बनाया है। इतनी दे शक्ति हमें ना डगमगाए, तेरे वचन पे सदा चलते रहे। इतनी दे शक्ति हमें ना डगमगाए, तेरे वचन पे सदा चलते रहे। यीशु तुम्हें अपने दिल में बसाया है, दिल में बसा के तुझको